अब पांडव माने पांडव, पांडवों की जाति का जहाँ स्थान है परमानेंट, उसका नाम पड़ा पांडुचेरी। संसार में सबसे बड़ी दासी कौन होती है? पिता बाद में, पहले माता ही सबसे बड़ी दासी होती है। और प्रकृति सबकी माता है, परमात्मा को प्रकृति पति भी कहा जाता है, वो सबकी पालना करती है। सत्य गुण में मनुष्य आत्मा सत्व प्रधान होती है तो पालना भी सत्व प्रधान करती है। और कलयुग में मनुष्य आत्माओं की प्रकृति स्वभाव संस्कार तमो प्रधान हो जाते हैं, तो प्रकृति माता पालना भी तमो प्रधान करती है। अरविंद आश्रम के लिए बताया कि जल्दी जल्दी वृद्धि को पाता है। क्यों पाता है? है? नहीं, क्योंकि उसमें विकार के लिए मना नहीं है। अभी की तो बात है, सारे संसार में फैल गया और यहाँ विकार के लिए मना है, विकृति में नहीं जाना है। वी माने विपरीत और कृति माने कार्य, कार माने कार्य, ऐसा कार्य जो कुदरत के नियम के विपरीत है उसको कहते हैं विकार। कुदरत के नियम के विपरीत कैसे? प्रकृति को तमो प्रधान क्यों बनना पड़ता है? क्योंकि मनुष्य आत्माएं कुदरती नियम के विपरीत चलती है। कुदरत को, प्रकृति को बनाने वाला कौन? मनुष्य। प्रकृति पति, अभी शब्द आया ना, वृक्षपति, प्रजापति, क्योंकि बनाने वाला तो क्रिएटर हुआ ना। और प्रकृति रचना हुई, क्रिएशन हुई, तो क्रिएटर और क्रिएशन का संबंध हुआ। संबंध साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? साकार में होते हैं। तो रचयिता हमेशा साकार होता है। आत्माओं का बाप निराकार तो है, लेकिन वो रचयिता है या नहीं है? है। आत्माओं का बाप आत्माओं को रचता है, आत्मा तो अनादि, फिर आत्माओं का बाप उसे रचयिता कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो सिर्फ आत्माओं का बाप है लेकिन आत्माओं को रचता नहीं है, मनुष्यों को रचा जाता है। कि जो चीज रची जाती है वो चीज बिगड़ भी जाती है। तो मनुष्यों का बाप हुआ रचयिता, मनुष्य शक्ति का। और मनुष्य शक्ति में सबसे पहली रचना रचता है किसकी? प्रकृति। प्रजा पिता तो खुद ही पिता है रचने वाला, मनुष्य शक्ति का। हाँ, उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है तो वो रचता है। किसको रचता है? सबसे पहले प्रकृति को। फर्स्ट क्लास रचना नहीं कही जाएगी, लेकिन आदि रचना है, आद भी सकती है। तो यज्ञ के आदि में सबसे पहले पहले किसकी रचना की? परमात्मा शिव ज्योति बिंदु ने प्रजापिता में प्रवेश करके रचयिता के रूप में, क्रिएटर के रूप में पहली पहली क्रिएशन कौन सी की? गीता माना। माता है तो कोई जड़ जमीन की बात है या जड़ पुस्तक की बात है? गीता शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र का मतलब क्या है? शासन करना। और शास्त्र माना शासन करने वाला विधान। तो परमात्मा ने जो शासन करने वाला बनाया विधायक, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सतयुग के आदि से लेकर के और कलयुग के अंत तक प्रकृति के नियम में कोई गड़बड़ हो नहीं सकती, इतना श्रेष्ठ शासक है। तो उसकी रचना यज्ञ के आदि में की, गीता माता। वो ही हो गई सारे धर्म ग्रंथों की माई बाप। माना जब सर्व धर्म ग्रंथों की माई बाप है तो सर्व धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनका भी, उनकी भी माता हो गई। और जब सबकी माता हो गई, विश्व धर्मों की माता हो गई, तो उसका नाम पड़ा जगत अम्बा। यज्ञ के आदि में ऐसी माता थी जिसके लिए मुरली ने बोला है कि ऐसे ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, उनको भी ड्रिल कराती थी, मानो ओम राधे दादा लेखराज को। ड्रिल कराती थी, ड्रिल मन योग में बैठा करके उनको एकाग्रता सिखाती थी। तो इससे क्या साबित हुआ कि मम्मा बाबा से भी वो आत्मा ज्यादा पावरफुल हुई या नहीं हुई? और वो भी यज्ञ के आदि में। अब ऐसे महावाक्य मुरलियों में छापे नहीं जाते, लेकिन जो छप गया वो प्रूफ तो आ चुका है। तो वो आदि वाली शक्ति जो बच्चियां थी चली गई, कारण या कारण जो आदि में हुआ सो अंत में जरूर होगा। तो वो ही बच्चियां अंत में भी फिर प्रत्यक्ष होती, एक जगदम्बा के रूप में और दूसरी लक्ष्मी के रूप में। दोनों का कनेक्शन अलग अलग युगों से है। जगदम्बा है कौन सी युग की? संगम युग की है जगदम्बा, जिसको बाप से वृक्ष की बादशाही मिलती है और जगदम्बा से मिलती है दूसरे बच्चों को। तो पहली पहली वृक्ष की बादशाही लेने वाली कौन? जगत अम्बा। और उसका सतयुग का आदि का रूप सत्व प्रधान होता है और कलयुग अंत का रूप महाविकराल तमो प्रधान रूप होता है। प्रकृति जब भयंकर रूप धारण करती है तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसलिए बाबा ने बोला कि शंकर कोई विनाश नहीं करता है। विनाश कौन करता है? शक्तियां ही असुर संहारिणी है। तो प्रकृति जड़ में भी है, जैसे चांद सितारे जड़ में भी हैं, तो धरती के सितारे चांद भी जरूर हैं। तो ऐसे ही प्रकृति के पांच तत्व तो जड़ रूप में भी है, तो प्रकृति के पांच सहयोगी जड़ तत्व चैतन्य में भी है। पांच जड़ तत्व और पांच विकार, ये दस मिलकर के रावण का रूप बनते हैं। क्या? पांच विकार और पांच तत्व, ये दस का जो संघात है वो ही रावण कहा जाता है। तो प्रकृति का संघात रूप जो है वो प्रकृति कहा जाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इनका जो संगठित रूप है वो ही प्रकृति कही जाती है। तो प्रकृति माता कहो, गीता माता कहो, वो स्वर्ग का वर्षा देने वाली नहीं है, लेकिन उसके द्वारा परमात्मा बात आकर के स्वर्ग का वर्षा हमको दिलाते हैं। तो जो बताया कि अरविंद आश्रम है, उनकी कितनी जल्दी जल्दी वृद्धि होती है, क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं है। विकृति भले करो लेकिन सत्संग में आओ। और प्रकृति भी विकृति में आती है, और सतो प्रधान प्रकृति भी होती है सतयुग में। और यहां बाबा ने बताया कि विकृति में नहीं जाना है। विकृति किसे कहेंगे? विपरीत कार्य, प्रकृति के विपरीत कार्य नहीं करना। और प्रकृति की रचना किसने की? प्रकृति पति। जैसे बाबा ने बोला कि अंत में प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी और प्रकृति पति अचल हो जाएगा। अगर प्रकृति पति अचल न हो और प्रकृति विकराल रूप धारण करती जाए तो क्या अंजाम होगा? प्रलय हो जाए, लेकिन प्रलय कभी होती नहीं है। प्रकृति जब विकराल रूप धारण करती है तो सांप डोल जाते हैं। पांच तत्व भी विकराल रूप धारण करते हैं। अब परमात्मा बाप कहते हैं विकृति में न जाओ, यानी प्रकृति के विपरीत तो कोई कार्य नहीं करो। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर अब विजय पानी। ऐसे और कोई कह नहीं सकता। कैसे? काम महाशत्रु ऐसे कोई नहीं कह सकता। फिर गीता क्यों पढ़ते हैं? गीता में भी तो लिखा हुआ काम महाशत्रु है, और पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, तो क्या वो ये बात पढ़ाते नहीं है कि काम महाशत्रु है? है? पढ़ाते तो है, लेकिन वास्तव में पढ़ाते हुए भी नहीं प्रैक्टिकल में है। सिर्फ कहते हैं काम महाशत्रु है, मजमे में बैठ करके उपदेश देते हैं, फिर शादियां कराते हैं। तो जब शादी कराते हैं तो उनका लक्ष्य क्या होता है? काम महाशत्रु है नहीं, तो कथनी कुछ और करनी कुछ और। ये कौन सी दुनिया की बात हुई? बाहर की दुनिया की बात हुई? बेहद की ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में तो ये बात नहीं है, नहीं है। यहाँ भी ये बात होगी, क्योंकि यहाँ की शूटिंग ही उस दुनिया में पहुंचती है। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे कोई नहीं कह सकता। जैसे बाप कहते हैं। कैसे कहते हैं? मनुष्यों के कहने में काम महाशत्रु है और करनी में और कथनी में क्या अंतर है? और बाप आकर कहते हैं काम महाशत्रु है और बाप की करनी में क्या अंतर है? बाप जो करते हैं वही कहते हैं। क्या करते हैं? बाप के लिए ये गायन है, ये चित्र बने हुए हैं, ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो विश्वनाथ, वो विश्वपति, पहले कामजीत बनता है फिर जगतजीत बनता है। शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? कामदेव भस्म कर दिया। भस्म कर दिया मैंने राख कर दिया। कहते हैं ना जल भुन के राख हो ही जाओ। राख हो जाने का मतलब क्या हुआ? खराब। जनता भुनता रहे लेकिन बिगाड़ कुछ भी न सके, ऐसी स्टेज बनाए देना। तो और दूसरे सिर्फ कहते हैं कि काम महाशत्रु है, लेकिन कहने वाले काम के ऊपर विजय विजय नहीं पाते, क्योंकि वो सन्यासी है दूरबाज खुशबाज। कोई मनुष्य मात्र ये नहीं कह सकता क्या काम महाशत्रु है, क्योंकि मनुष्य मात्र इस सृष्टि पर काम का चेहरा है। तो जो दास बन चुके हैं वो सारी सृष्टि अभी उदास हुई पड़ी है कि इस पर विजय नहीं पाई जा सकती। तो बाप आकर हमको हिम्मत दिलाते हैं। बच्चे काम महाशत्रु है और इसको प्रैक्टिकल जीवन में, इसी जीवन में जीतना है, दूरबाज खुशबाज होकर के नहीं, जैसे सन्यासियों ने किया अथवा जैसे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां कर रही है। घर घाट छोड़ दिया और फिर विकारों के ऊपर विजय का नारा लगाया जा रहा है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई 10 साल जेल में रहे और जेल में से बाहर आए तो उसे ये अहंकार आने लगे, मैंने 10 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये पालन किया या मजबूरी? ऐसे नहीं कि तथाकथित आधारभूत ब्राह्मणों में ही, उस दुनिया में ही ऐसे सन्यासी जो ब्राह्मणों की तीसरी दुनिया है, बीज रूप आत्माओं की दुनिया, उसमें भी सन्यासियों के बीज हैं। अंदर से एक और बाहर से दूसरे, दूरबाज खुशबाज होकर के तो विजय पा सकते हैं, लेकिन अगर उनको करीब लाया जाए, समीप लाया जाए तो लथपथ हो जाते हैं, घबराते हैं, कहते हैं ये नहीं, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। तो बाप कहते हैं जैसे वैसे और कोई नहीं कह सके। यादगार मंदिर में रखी हुई है, शिवलिंग रखा हुआ है और जलाधारी भी रखी हुई है। बाबा ने बोला है याद में रहकर जिन कर्मेंद्रियों से जो कर्म किए हैं वो कर्मेंद्रियां पूजी जाती है। तो और देवताओं का किसी का पांव पूजे जाते हैं, किसी का पूरा शरीर पूजा जाता है, किसी का मुख पूजा जाता है, किसी के हस्तकमल पूजे जाते हैं, और उसका नाम शिवलिंग क्यों रखा हुआ है? वो लिंग क्यों पूजा जाता है? और फिर लिंग के साथ जलाधारी भी रखी हुई है, माता का रूप भी रखा हुआ है उस बाप के साथ, पुरुष और प्रकृति दोनों का संयोग दिखाया गया है, और काम के ऊपर विजय। तो ऐसे और कोई कह न सके। कैसे? जैसे बाप आकर के प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ऐसे कोई कह न सके और कर न सके। नहीं तो उन्हों के पास हंगामा हो जाए। किनों के पास? यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात ही नहीं। और पावन बनने की बात सुनते ही नहीं, किंतु मनुष्य सब पतित है। कहते हैं विकार विगड़ बच्चे कैसे पैदा होंगे, माना विकृति विगड़ बच्चे पैदा नहीं हो सकते। विपरीत कर्म अगर हम नहीं करेंगे, प्रकृति के विपरीत कर्म अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चे 22 नंबर के पेज पर 9389 का पहले क्लास दूसरे पेज का मध्य भी। तो पतित मनुष्य कहते हैं विकार विगर बच्चे कैसे पैदा होंगे, उन विचारों का भी दोष नहीं है ऐसे कहने में। क्यों दोष नहीं है बिचारे, क्योंकि है ही तमो प्रधान स्टेज में। गीता पाठी कहते भी है भगवान वाह काम महाशत्रु है, कहते हैं सिर्फ ये भी कहते हैं उनको जीतने से जगत जीत बनेंगे, किनको जीतने से विकारों को जीतने, लेकिन किसी ने करके नहीं दिखाया क्या कि विकारों पर जीत पा करके जगत जीत हिस्ट्री में बन करके किसी सन्यासी ने दिखाया होता सारे जगत को जीत लेना। माना जो सन्मुख आए, जो सुने, जो दृष्टि व्यक्ति के संसर्ग संपर्क में आए वो चेंज हो जाए, अनुकूल बन जाए, उसकी प्रतिकूलता समाप्त हो जाए, ऐसा जगत जीत काम विकार जीत कोई बना नहीं। वो मिसाल सिर्फ एक के लिए है, किसके लिए? शास्त्रों में जगत जीत कहा जाता है किसको? जगन्नाथ को या विश्वनाथ को, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, योग बल से विश्व की बादशाही मिली। ऐसे भी नहीं कहा ज्ञान के बल से मिली, धारणा के बल से मिली या सर्विस के बल से मिली, नहीं सिर्फ योग बल से विश्व की बादशाही। तो ये योग बल से विश्व की बादशाही और बाहुबल से विश्व की बात चाहिए, लेकिन बाहुबल से कोई विश्व का बात बन ही नहीं सकता। बाहुबल होता है हिंसा का बल और योग बल होता है अहिंसा का, इसमें हिंसा का सवाल नहीं। गीता पाठी कहते भी हैं काम को जीतने से जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि काम को कैसे जीता जाए और कैसे जीत कर जगत जीत बनते हैं। वो जब ये अक्षर सुनाते हैं तो उनको समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं कि जैसे हनुमान दर पर जूतियों पर जाकर बैठता था, कहाँ बैठता था जाके? दर पर। दर पर माना उनके घर पर, उनके मठ पंथ पे जाओ और जूतियों में जाके बैठो, घुस जाओ। क्यों? क्योंकि जब तक किसी के क्लोज कॉन्टेक्ट में ना आया जाए तब तक उसकी असलियत का पता नहीं पड़ता, इसलिए उनके दर पर जाओ और जूतियों में घुस के बैठता था, ऐसा करो। हनुमान का मिसाल तो है कि नहीं बच्चों का? तुम बच्चों का मिसाल है ना। बाबा भी कहते हैं जाकर के किनारे बैठ करके सुन करके आओ। जूती किसे कहा जाता है? शरीर रूपी जूती। शिव बाबा का लंग बूट कौन है? ब्रह्मा है शिव बाबा का लंग बूट। भारत में कहते हैं कि एक स्त्री मर जाती है तो एक जूती गई और दूसरी लेते हैं। तो कलयुग में भारत को स्त्री को क्या समझते हैं? जूती समझते हैं। अब यहाँ बात हो रही है उन सन्यासियों की जो उनको पांव की जूती समझते हैं। बाहर की दुनिया की बात नहीं है, सब कुछ ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है। सिर्फ कहने मात्र के लिए कन्याओं माताओं को मुख्य प्रशासिका सह प्रशासिका टाइटल दिए हुए हैं, लेकिन उनकी बात एक भी नहीं मानी जाती। जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो गाइड कौन हुआ जा?
लेकिन मिला और खो गया।
नहीं हो सकता। बेटी होगी तो माँ की बेटी नहीं होगी, माँ बाप तो दोनों होने चाहिए ना। कहीं करती थी ब्रह्मा तुम्हारी सरस्वती, सुनिए तो तुम उनको मम्मा कहते थे, बन तुम उनको मम्मा कहते थे। और बारह में क्या कहा, तुम्हारी लिए क्या थी बहन थी, हाँ ब्रह्मा को मम्मा कहना शोभता नहीं, क्यों नहीं शोभता, क्योंकि तन पुरुष का था इसलिए अम्मा कहते थे। अम्मा तो कौन सी चोले में होनी चाहिए, स्त्री चोले में होनी चाहिए, तो ये गुंजाइश है ना, क्या गुंजाइश माना मार्जिन है कि मम्मा वास्तव में कौन। इसलिए मुरली ने एक जगह बोला इन्हें मम्मा वाला को भी वास्तव में माता पिता नहीं कहेंगे, क्यों बोला, ये भी गुंजाइश है माना मार्जिन है, इसमें ये समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। पकड़े वाली बुद्धि होगी, विकारों का कचरा होगा, किसी न किसी देवभाव का कचरा होगा, तो ये बातें समझ में नहीं आएगी। ये प्रिय बातें हैं क्योंकि गुरु तो गुरु राज समझाता हूँ, राज यदि सिखाता हूँ तो राज की बात बताता हूँ। तुम किसके भी मंदिर में जाएंगे तो झट उनका एजुकेशन जान लेंगे, चाहे देवी के मंदिर में जाओ चाहे देवता के मंदिर में जाओ, तुम्हारी बुद्धि में तो ज्ञान आ गया ना रचयता और रचना का, तो तुम उनका झट एजुकेशन जान लेंगे, जान लेंगे या नहीं जान लेंगे कि उनका धंधा क्या था। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगी कि वह फिर कब आवेंगे, इन लोगों को कुछ पता नहीं, इन लोगों को जो गुरु नानक के सालों से सीख रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि कल्प की आयु लंबी कर दी, तुम तो वर्णन कर सकते हो, तुम क्यों वर्णन कर सकते हो, वो क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने कल्प की आयु बहुत लंबी लाखों वर्षों में कर दी है, तो उसका हिसाब किताब कैसे बताएं, और तुम तो 5000 वर्ष बताते हो कल्प की आयु, तो तुम तो वर्णन कर सकते हो। बाप कहते हैं देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ, और आपा कहते हैं किसी की तो बात ही नहीं, मनुष्य तो गीता का ही पाठ करते रहते हैं, क्या तथा कथित ब्राह्मण मनुष्य है वो सिर्फ गीता का पाठ करते हैं, मुरली का उसका अर्थ अर्थ नहीं समझते। एक होता है रटना पाठ करना, और एक होता है उसके अर्थ को समझना, तो फायदा किससे होगा, समझने से फायदा होगा या गीता रामायण का पाठ करने से फायदा होगा। कोई 18 अध्याय याद करते हैं तो उनकी कितनी महिमा हो जाती है, एक श्लोक सुनाया तो कहेंगे वाह वाह इन जैसा महात्मा तो कोई नहीं है, इसे बहुत विद्वान है। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत, जादू का खेल बहुत दिखाते हैं, क्या जादू का खेल बहुत दिखाते हैं जो कोई न दिखा सके। पूरी एशिया में जितना बड़ा हाल कोई धर्म संप्रदाय ने न बनाया हो वो इतना बड़ा हाल बना के दिखाई दिया, तो समस्या तो हो गई बुद्धि, ये हुई वृद्धि, वृद्धि माने धन की समृद्धि, धन संपत्ति हमारे पास इतना है आप है लोगों की क्यों दिखाएगा, बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई, क्या स्वर्ग मिल गया, क्या क्यों दिया धाम शांति धाम। तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, देखो दुनिया में कैसी छवि लगी पड़ी, है कुछ भी नहीं, रंग के पानी निकल। दुनिया में ठगी बहुत है, बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं, परंतु पढ़ने वालों पर मदार है। टीचर तो एक रख पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो ना पास होंगे, ये भी होना जरूरी है क्या? कोई ना पास होंगे और कोई पास हो जाएंगे। सारी बात हम स्थापन होंगे, तुम ये ज्ञान स्नान करके ज्ञान का दीपा, ज्ञान का गोता लगाए, परिस्थान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते, रात दिन का फर्क हो जाता है। वहाँ पांच तत्व भी सतत दान होने से शरीर भी ऐसी तो बनता है, नेचुरल ड्यूटी रहती है, वो है ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि। कौन सी? स्वर्ग या इक्कीसवां जन्म, अभी आखिरी भूमि है। क्या कहा? अभी जो भूमि स्थापन हुई है वो क्या है? आखिरी। तो स्वर्ग नर्क में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठा हुआ। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्कर लगाने जाती हैं। अगर अच्छी माताएं आदि हैं तो सर्विस को जमाना पड़े। क्या कहा? जमाना पड़े सर्विस को, कहाँ जमानी पड़े? नए स्थान में जहाँ कहीं बच्चियां जाती हैं, अगर वहाँ अच्छी माताएं हैं तो सर्विस को जमाना पड़े। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते हैं तो वो अपना नुकसान करते क्या? तुम नए स्थान पर पहुंचे और वहां अगर अच्छी माताएं मिल गई तो ये नहीं देखो कि सेंटर पर कोई नहीं आ रहा है क्या? कोई सेंटर पर आता हो या ना आता हो, आने वाले अगर आना बंद कर दे तो वो अपना नुकसान करते। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते हैं तो उनको फिर लिखना चाहिए। तुम पढ़ते नहीं हो इससे तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। लौकिक दुनिया में भी है कि माँ बाप कहते हैं कि तुम नहीं पढ़ते हो तो क्या करोगे? गाँव छी लोगे। और जो पढ़ रहा है तो आईएएस का एग्जाम पास करके क्या बन जाएगा? बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाएगा। तो जब तुम घास छोड़ोगे और वो ऑफिसर बनेगा तब महसूस होगा क्या कि हमको तो बहुत बड़ा घाटा लग गया। तो उनको लिखना चाहिए। रोज रोज बहुत गुह्य पॉइंट निकलती है, ये है हीरे रतन। तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। ये उनको लिखना चाहिए कि आजकल बहुत नए नए पॉइंट निकल रहे हैं भगत वाले, तो उनको लुभाई मानी होगी। इतने इंच स्वर की बात चाहिए तुम गवाई देंगे। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। ऐसी बात को तुमने छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे और फिर खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। तब बहाने पड़ेंगे। अगर ऐसे बाप को छोड़ दिया, कैसे बाप को जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं तो बाद में मिलेगी, अभी क्या देते हैं है? अभी हीरे जवाहरात देते तो तुम उसकी कदर नहीं करते। सागर में रतन भी है और सागर से जहर भी निकलता है, तुम किसको देखते हो? तुमको जहर लेना है या रतन लेना है? अगर रत्न लेंगे, रत्नों की तरफ तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन जाएगा तो रत्नों भरी दुनिया में आ जाएंगे, हीरे जवाहर आप की दुनिया में आ जाएंगे। और जहर बुद्धि में रहा तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले जहरीले बच बने। बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये जन्म जन्मांतर की प्राप्ति की बाजी नहीं है, कल्प कल्पांतर की प्राप्ति की बाजी है। ऐसे लिखा पढ़ी करो तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे। तुम माने कौन है? उठाए सकेंगी कौन? तुम माने कौन? पांडव? पांडवों की बात हो रही है? यहाँ अच्छी अच्छी माताएं हैं संभालने वाली। तो नए नए संस्कार जमाने के लिए जहाँ ब्राह्मणी जाती है तो मुख्य ब्राह्मण कौन हुई? मुख्य ब्राह्मणी तो मुंबई हुई, आदि देवी जगदम्बा। तो वहां क्या करना पड़े? संस्कार जमाना पड़े। हिम्मत नहीं हारनी है क्या? तेरा चाहता बाप कोई नहीं जाना तो हमारी तो और ही दुर्गति कर देंगे। नहीं, जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो प्राप्ति करेंगे, नहीं पढ़ाई पढ़ते हैं तो दबाएंगे। ऐसे नहीं, कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। इसे कहा, ये बात किससे कही? बच्चियों से कही। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्कर लगाने जाती हैं तो अच्छी माताएं हैं तो तुम भी जम जाओ। इन माताओं को भी उन माफी देते रहे। कोई नहीं आता है तो इसकी चिंता नहीं करनी, छोड़ नहीं देना। टीचर को होना रहता है कि हमारे स्टूडेंट जाति पास नहीं होंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। क्या हाँ? बाबा लिखते भी हैं तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है। शायद तुम सोती हो सर्विस कम क्यों चलती है? शायद तुम सोती हो और मुरली किसके ऊपर चल रही है? कौन से टाइम के ऊपर चल रही है? शिव जयंती के ऊपर मुरली चल रही है। तो दुनिया तो अज्ञान युग में सो ही रही है, कोई स्कूल सोने की बात नहीं है क्या? तुम्हारा संकल्प क्यों नहीं फल खाता? क्यों सर्विस कम चलती है? स्टूडेंट क्यों उड़ जाते हैं, नहीं आते? शायद तुम सोच स्कूल युग में, स्कूल युग की बात नहीं है, अज्ञान युग में सोती हो। तुमको पता नहीं है कि शिव बाप आया हुआ है। सबकी सबकी शिव जयंती अभी मनाने के समय तो सोती नहीं हो, सोती हो और खाती हो। क्या क्या करती हो? फिर सोती हो और खाती हो, ज्ञान भोजन करती हो। सोती हो माने अज्ञान को भोजन करती हो और खाती हो माने ज्ञान को हजम करती है। ज्ञान को हजम करती हो कि ज्ञान को खत्म करती है? शायद तुम सोती हो और खाती हो। तुम्हें ज्ञान को हजम करने का अर्थ लगता है? ज्ञान को हजम करने का अर्थ नहीं लगता है। क्या अर्थ लगता है? ज्ञान को खत्म करती है। अच्छा, नीचे नीचे सुखी दो बच्चों के माँ के साथ बात करना था। याद प्यार गुड मॉर्निंग रियानी बात की रियानी करते हैं। बाईस नंबर के रेस्टर में 22 पेज का 9389 का पैकेट लास्ट चल रहा था, पहले पेज के अंत में। बात चल रही थी बीज बाप रचयिता की। बाप है रचयिता बीज रूप में। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। शास्त्र में उसे कह दिया है प्रजापति। और हमारे ब्राह्मण कुल में क्या कहा गया? प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये पिता और पति का अंतर क्यों हुआ? शास्त्रों में प्रजापति क्यों आया और हमारे ब्राह्मण कुल में प्रजापिता क्यों कहा गया? पिता इसलिए कहा गया कि जब संपन्न स्टेज होती है तब का गायन शास्त्रों में लिखा हुआ है। असंपन्नता की जो स्टेज है शुरुआत की, उसका गायन शास्त्रों में नहीं है। तो यज्ञ के आदि में जो प्रजा पिता का रूप था वो बीजारोपण के समय का आदि का रूप था। उस समय हर ब्राह्मण आत्मा अपनी अधूरी स्टेज में होती है। तो जो यज्ञ के आदि का प्रजा पिता था, जो ज्ञान का बीजारोपण करने का निमित्त बना, वही पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद विश्वपति कहो या प्रजापति कहो संसार में प्रत्यक्ष होता है। वृक्षपति भी कहा जाता है। अब वो तो जड़ बीज होते हैं, उनको ऐसे नहीं समझेंगे कि वो वृक्ष के पति है। कौन से बीज? जो जड़ बीज होते हैं उनको पिता तो कह सकते हैं क्योंकि बहुत तो है, लेकिन पति नहीं कह सकते। हर बीज में से रचना उत्पन्न होती है, चाहे वो जड़ हो या चैतन्य हो। तो पिता तो है, बीज माना ही पिता, लेकिन चैतन्य बीज अंत में वृक्ष पति भी बनता है। पति माने रक्षक, पाप जो रक्षा करता है। जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे ऋषु का कितना बड़ा झाड़ है, वो है जड़ झाड़ और ये है चैतन्य। सत्य चित्त आनंद स्वरूप मनुष्य सत्य का बीज रूप बड़ा झाड़ है। सारे ऋषु का कितना बड़ा झाड़, मॉडल छोटा बनाते हैं। मनुष्य सत्य का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंच से ऊंच बाप वो नाली सुन, उन झाड़ों की तो नाली बहुतों को होती है और इनकी नाली से सिर्फ एक बाप ही देते। दूसरा पेज। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल, बेहद की बुद्धि दे दी है क्या? अब की ब्राह्मणों की बुद्धि में और पहले की बुद्धि में क्या अंतर हुआ? लौकिक को हमने अलौकिक में बदल दिया, हद को अब बेहद में बदल दिया। इसलिए बोला इतनी बड़ी दृष्टि के अंदर तुम बच्चों का अपना ही छोटा सा संसार है। तो संसार भी बदल गया, उस छोटे से बीज रूप संसार में सारी दुनिया समाई हुई है। एक एक बीज में एक एक दुनिया समाई हुई है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए कितना बड़ा पोला इस झाड़ को मिला हुआ। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं, अब सारी दुनिया ही पतित है और सारी शक्ति ही हिंसक है। एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। किस बात का ज्ञान मिला? कि सारी सृष्टि हिंसा करने वाली है और अहिंसा की सिर्फ देवता धर्म ही होता है। बोली सत्य बोली बोली देवता। अब कलयुग के अंत में आकर संघ के रंग में आते आते बोली हिंसक बन चुके। सत्युग में देवी देवता धर्म को ही राम राज्य कहा जाता है। त्रेता को राम राज्य कहा जाता है या सत्युग को राम राज्य कहा जाता है? क्यों? त्रेता में राम राज्य करते हैं, राजा राम होता है, फिर सत्युग में राम राज्य क्यों कहा गया? क्योंकि राम के द्वारा ही सत्युग युग की राज्य की स्थापना होती है, इसलिए सत्युग को भी राम राज्य कहा जाता है, कृष्ण राज्य नहीं कहा जाता। पहले पहले नया धर्म बहुत छोटा होता है, पहले थोर में एक धर्म था, फिर फाउंडेशन से तीन चीज निकलती है। कौन कौन सी तीन चीज थी? इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का, थोड़ी से साल साल में छोटी छोटी निकलती है। अब तो इस धारा का थोड़ी ही नहीं, ये एक ही मिसाल वृक्ष की दी जाती है जिसका थोड़ा गायब हो जाता है और साल साल में बची रहती है। वो वृक्ष कौन सा है? बड़ का धार। उसका नाम भी दिया बड़ बड़। बहुत फैलाव, बहुत विस्तार हो जाता है, लेकिन मूल तना और मूल जड़ देखने में नहीं आती। उनका मिसाल बड़ के धार से अतिरिक्त है। बड़ का धार बिगर, बड़ का धार बिगर थुर सारा खड़ा हुआ और थुर है ही नहीं और फिर सूखता भी नहीं है। जड़ से तने को ताकत मिलती है और तने से सारे वृक्ष को ताकत मिलती है, लेकिन यहाँ तो तना और मूल जड़ ही जड़ और फिर भी सारा भाग खड़ा रहता है। देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, फिर तो यही है ना। कौन सा देवी देवता धर्म? राम राज्य भी थुर में अथवा देवता धर्म ही आ जाता है। बात कहते हैं हम तीन धर्म स्थापन करते हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और देवता धर्म। शूद्रों से ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मणों से युद्ध की स्टेज में जो फेल हो जाते वो बनते क्षत्रिय और पास हो जाते वो बनते देवता। ये सब बातों से संगम जी ब्राह्मण ही समझते हैं। ब्राह्मणों को छोटा सा कुल है, छोटे छोटे मठपन से निकलते हैं ना। हरी आसन है, कितना जल्दी 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 को पाते हैं, कितना निकाल लिया